ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच, एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमाता दितिस्तदा हृते त्रिविष्टपे दयितैः पर्यतप्यदनाथवत्। हरे कृष्ण। श्री शुक उवाच, एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमाता दितिस्तदा हृते त्रिविष्टपे दयितैः पर्यतप्यदनाथवत्। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं इस प्रकार पुत्रेषु पुत्रों के नष्टेषु छिप जाने पर देव माता देवताओं की जननी अदिति अदिति तदा तब हृते छीन लिए जाने पर त्रिविष्टपे स्वर्ग दैतई दैत्यों के द्वारा पर्यतप्यत संताप करने लगी अनाथवत अनाथ की भांति। जय श्री प्रभुपाद। इस प्रकार पुत्रों के छिप जाने पर दैत्यों के द्वारा स्वर्ग को कब्जा कर लेने पर देव माता अदिति अनाथ की तरह संताप करने लगी। विलाप नहीं कर रही है, रो नहीं रही है, संताप कर रही, हृदय जल रहा है, क्योंकि पुत्र पता नहीं कहाँ चले गए। दो कारण है इनके संताप करने का। एक कारण है कि पुत्र स्वर्ग छोड़ दिए और कुछ पता भी नहीं है कि कहाँ गए। कोई भी जननी कोई भी माँ अपने पुत्र को इस प्रकार अकस्मात कहीं चले जाने पर दुखी हो जाएगी, स्वाभाविक है। कहाँ चले गए? अभी स्वर्ग के मालिक थे, राजा थे, सुखी थे, इतना समृद्धि प्राप्त था और अचानक यहाँ से उनको जाना पड़ा। अगर मानो किसी कारणवश कहीं घूमने के लिए गए होते तो कोई बात नहीं, लेकिन एक संकट उपस्थित हो गया है। इनके राज्य को इनके संपदा को बलि कब्जा कर लिया है, स्वर्ग की संपत्ति को दैत्यों के द्वारा छीन लिया गया है और इस दुख से मजबूरी में देवताओं को स्वर्ग छोड़ना पड़ा है। यह दुख का विषय है। इसलिए माता अदिति हृदय से बड़ा दुखी थी, एकदम संतप्त थी, पर्यतप्यत तप रही थी, हृदय जल रहा था। इस अध्याय में श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं षोडशे पुत्र नाशेन शोचंत्या अदिति पति प्रार्थित कश्यप प्राह पयोव्रतम इति रियते। इस 16वें अध्याय में वर्णन है अदिति के शोक का और कश्यप जी का अचानक आश्रम पर आगमन और अपने पत्नी के दुख के प्रति जिज्ञासा और समर्थ पति से अदिति जी अपने पुत्रों के सुख की कामना करती हैं। उनके सुख प्राप्ति के लिए कश्यप जी के द्वारा पयोव्रत का उपदेश, एक कथा है। इदानीम श्री वामनावतार प्रसंगम आह एवं इत्यादि जावत समाप्ति। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं यहाँ से भगवान वामन देव के अवतार की भूमिका प्रारंभ हो रही है। यहाँ से प्रारंभ करके प्रसंग जहाँ तक समाप्त होता है वहाँ तक, माने आगे 16 से लेकर 23 अध्याय तक 8 अध्याय में भगवान वामन देव की कथा प्रारंभ होने जा रही है, यह भूमिका है। एवं पुत्रेषु नष्टेषु, तो नष्टेषु का अर्थ पुत्रों के नाश होने पर अदिति शोक नहीं कर रही थी। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं नष्टेषु अदृष्टेषु सत्सु। यहाँ नाश का अर्थ एकदम नाश नहीं है, पुत्र छिप गए हैं, दिख नहीं रहे हैं, अदृश्य हो गए हैं, उसी अदृश्यता को सुखदेव गोस्वामी नष्ट कह रहे हैं। यहाँ नष्टेशु सुनकर यह नहीं सोच लेना चाहिए कि वास्तव में देवता लोग नष्ट हो गए, नहीं, अदृश्य हो गए थे। नष्टेशु अदृष्टेशु सत्सु, जो छिप गए थे उसी को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। यहाँ नष्ट होना छिपने के अर्थ में है। अदिति के पुत्र देवगण अदृश्य हो गए अर्थात स्वर्ग छोड़कर चले गए, यह शोक का विषय था अदिति का। इसके कारण वो संतप्त थी, सोच सोच कर जलती रहती थी, चित जलता रहता था। ऐसा होता है, जिसको खुशी प्राप्त होता है वो खुशी मनाता है, और जो दुख को प्राप्त करता है वो उनका चित जलता है। इलेक्शन के परिणाम के बाद अखबार वाले बड़ा रोचक टॉपिक निकालते हैं। ट्रेन में आते समय दूर से मैं देखा, कहीं झारखंड में कुछ चुनाव हुआ था, पंचायत चुनाव, तो कहे कहीं दीप जला कहीं दिल जला। तो मैं पढ़ा नहीं लेकिन समझ गया वो क्या कहना चाहते हैं। यहाँ तो बलि महाराज का दीप जल रहा है, स्वर्ग पर प्राप्त कब्जा प्राप्त कर लिए हैं, इधर अदिति का दिल जल रहा है। पर्यतप्यद अनाथवत, कोई है नहीं, अनाथ की तरह अदिति जल रही है। एकदा कश्यपस्तस्या आश्रमम भगवान अगात, निरुत्सवम निरानंदम समाधे विरतः चिरात। एकदा चिरात भगवान कश्यप समाधे विरतः तस्या आश्रमम अगात। तो एकदा एक बार जिस समय अदिति दुखी थी उसी समय चिरात भगवान कश्यप समाधे विरत, बहुत काल के बाद, बहुत दिनों के बाद कश्यप जी, परम प्रभावशाली कश्यप की समाधि टूटी। भजन करते थे, देखिए गृहस्थों का आदर्श हमारे वैदिक इतिहास में, जिनके इतने पुत्र परिवार संतान है वो व्यक्ति समाधि में है, क्या सन्यासी समाधि में रहेगा। कश्यप जी की अनेक पत्नियां थी, संपूर्ण सृष्टि में बहुत बड़ा योगदान कश्यप जी का है। देवताओं के पिता, असुरों के पिता, पशुओं के पिता, पक्षियों के पिता, सर्पों के पिता, सबके पिता हैं कश्यप जी। अपने पत्नियों से अनेक प्रकार की सृष्टि किए हैं, जो क्रमशः भागवत पढ़े होंगे उनको पता है। कश्यप जी सर्पों का भी जन्म दिए हैं, पक्षियों का भी जन्म दिए हैं, गरुड़ जी के भी पिता हैं, नागों के भी पिता हैं, और देवताओं के पिता हैं, अनेक संतान हैं, अनेक प्रकार के, इतने भरा पूरा परिवार है, फिर भी व्यक्ति किसी टेंशन में नहीं, भगवान की भक्ति में, समाधि में, बहुत काल तक समाधि में रहे। घर गृहस्थी में रहने वाले एक बहाना कहते हैं, स्वाभाविक भी लगता है सुनने में, कि हमको फुर्सत नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा 2 घंटा भजन कर लेंगे, हमको कहाँ टाइम है घर गृहस्थी से। लेकिन एक गृहस्थ की कथा कही जा रही है, चिरात बहुत काल तक समाधि में रहने वाले कश्यप एक दिन समाधि से विरत हुए, समाधि उनकी टूटी और वो आश्रम पर आए अपने पत्नी अदिति के पास। तो कश्यप जी के लिए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, भगवान कश्यप। एकदा कश्यपस्तस्या आश्रमम भगवान अगात, भगवान कश्यप जी की विशेषण है। भगवान कश्यप एक दिन अपने समाधि से विरत हुए, उनकी समाधि टूटी। तो भगवान कश्यप का अर्थ है कि परम प्रभावशाली समर्थ कश्यप जी। भगवान का अर्थ है षडैश्वर्य पूर्ण, सभी ऐश्वर्यों से जो परिपूर्ण है उन्हें भगवान कहते हैं। लेकिन वह भग, वह ऐश्वर्य जब किंचित किसी व्यक्ति में भी दिखता है तो उसको भगवान कह दिया जाता है। अर्थात ऐसे षडैश्वर्य पूर्ण भगवान से जो युक्त है उसको भी भगवान कह दिया जाता है। भगवान के भक्तों को भी भगवान प्रभु संबोधन किया जाता है। वास्तव में प्रभु कोई जीव नहीं हो सकता, भगवान ही प्रभु हैं, समर्थ हैं, भगवान भगवान ही हैं, कोई व्यक्ति नहीं भगवान हो सकता। लेकिन भगवान से संबंध होने के कारण उनको तदात्म करके भगवान कह दिया जाता है। भगवान का यहाँ अर्थ भगवान नहीं, भगवान वाला है। जैसे रिक्शावान को, रिक्शे वाला को रिक्शा कह दिया जाता है, कभी जरूरत पड़ने पर जाते हैं, ओ रिक्शा इधर आओ, तो रिक्शा नहीं आता है, रिक्शा वाला आता है। रिक्शा से उसका संबंध है, इसलिए उसको रिक्शा कह देने पर बुरा भी नहीं मानता है। वो जान जाता है कि मुझे बुलाया जा रहा है। उसी प्रकार भगवान से जिसका संबंध है, जो भगवान से युक्त है, वो भी भगवान है। इसलिए कश्यप जी को यहाँ भगवान कहा गया, परम प्रभावशाली कश्यप जी, समर्थ कश्यप जी की समाधि टूटी। और समाधि टूटी तो आश्रमम अगात, आश्रम पर आए। किसके आश्रम पर? तस्य आश्रमम, वो अदिति के आश्रम पर। और आश्रम पर आए तो देखते क्या है, निरुत्सवम निरानंदम, यह आश्रम बिल्कुल उदास है, कोई उत्सव नहीं है, कोई आनंद नहीं है, एकदम सूना साना दिख रहा है, कोई डेकोरेशन कोई सजावट नहीं है, एकदम उदास लग रहा है। कश्यप जी जब आते हैं तो देखते हैं, आश्रम देखकर ही समझ गए, निरुत्सवम निरानंदम, कोई उत्सव नहीं है, कोई आनंद नहीं है, एकदम उदासी है। दूर से आश्रम के निकट आए तो आश्रम को ही देखकर उनको लग गया कि कोई बात है, कोई चहल पहल नहीं है, बिल्कुल सुना साना उदासी है। और इसके बाद अपने पत्नी को देखते हैं, सब पत्नीम दीन बदनाम कृतासन परिग्रह सभाजितो यथा न्यायम इदम बाह कुरुद्वह। हे परीक्षित, क्या स्थिति है, संबोधन करते हैं सुखदेव गोस्वामी, जरा ध्यान से कथा सुनो। अब वहां अदिति के आश्रम पर कश्यप जी पहुंचे हैं, देखकर ही उदासी सुना सना सन्नाटा देखकर ही समझ गए कि कोई बात है। लेकिन जब वो गए तो उनकी पत्नी दिखी दीन बदनाम, सब पत्नी दीन बदनाम, वो अत्यंत खिन्न मुखी। अब उनका मुख उदासी के कारण बिल्कुल बुरा दिख रहा था, खिन्न बदना, दीन बदनाम पत्नी, खिन्न मुखी अपनी पत्नी को देखे और देख करके इदम आह इस प्रकार कहे। लेकिन इसके पहले वो दीन बदना तो है, उदास तो जरूर है, लेकिन जो यथोचित सत्कार है उसमें वह गलती नहीं की। जब ही कश्यप जी आए उनको प्रणाम की, उनका चरण छूकर प्रणाम की, उनको बैठने के लिए आसन दी, यथा न्यायम जैसा न्याय है जैसा उचित है वैसा सत्कार की। यदा आसन परिग्रह कृत, आसन दी उनको बैठने के लिए, उनको प्रणाम की, यथा न्यायम सभाजित जैसा शिष्टाचार है जो नियम है उन विधि पूर्वक उनका सत्कार की। कश्यप जी आए तो उनको बैठने के लिए आसन दी, प्रणाम की, उनका चरण धोई, विधि पूर्वक उनका सत्कार की। लेकिन सब कुछ करते हुए उदास थी, जो स्वाभाविक स्त्रियों का नेचर होता है अपने लोगों को देखकर मुस्कुराना, स्वाभाविक स्वाभाविक नेचर है। अपने जनों को, अपने पुत्र को, पति को, भाई को, पिता को, किसी को देखने के बाद कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक मुस्कुराता है, लेकिन स्त्रियों में विशेष स्वभाव होता है मुस्कुरा कर स्वागत करना, लेकिन ये नहीं कर पाई, इसी का केवल कमी था। खिन्न बदनाम, प्रणाम करने में, पैर धोने में, उनको स्वागत करने में, उनके लिए पानी पीने के लिए देने में, इसमें कोई कमी नहीं की, वो सब चीज की, लेकिन उदास थी। तब उदास देखकर कश्यप जी इदम आह यह कहे, इस प्रकार बोलने लगे। अब कश्यप जी क्या बोलते हैं, अप्य भद्रम न विप्राणाम भद्रे लोके धुनागता न धर्मस्य न लोकस्य मृतो छंदानुवर्तिनः। संबोधन करते हैं, हे भद्रे, हे कल्याणी, कल्याणी संबोधन करके कश्यप जी कहते हैं कि तुम इस अवस्था को प्राप्त हो कि तुम्हारा कभी अकल्याण हो ही नहीं सकता, और भद्र का कोई सवाल ही नहीं, तुम्हारा तो हमेशा भद्र हो सकता है, हमेशा कल्याण हो सकता है, तुम कल्याणी हो, तुमको ये उदासी कहां से। हे भद्रे, हे कल्याणी, अधुना विप्राणाम न अपि धर्मस्य न मृतो छंद अनुवर्तिनः लोकस्य न भद्रम आगतम। प्रश्न कर रहे हैं कश्यप जी कि हे कल्याणी, तुम इतना उदास क्यों हो, क्या बात है। तो उदासी के संभावित संभावनाओं के प्रति बोल रहे हैं कि इस समय संसार में ब्राह्मणों पर कोई विपत्ति आ गई है क्या, देवता की जननी कैसे उदास हो जाएगी, देवताओं की जननी के उदासी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए कश्यप जी के प्रश्न,
क्या इस समय संसार में ब्राह्मणों पर कोई विपत्ति आ गई है अथवा धर्म का ठीक ठीक पालन नहीं हो रहा है, समय से नहीं जग पाती हो, गृहस्थी के कार्यों के चलते ये समय से मंगला आरती नहीं होता है, या जो समय से आहुति करना चाहिए वो नहीं होता है, जप नहीं होता है, धर्म का पालन ठीक से नहीं हो रहा है क्या? अगर यह कारण तुम्हारे उदासी का नहीं है तो किसी की मृत्यु हो गई हो, बहुत काल के बाद लौटे हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोगों की मृत्यु हो गई हो। तो कहते हैं यह मृत्यु तो उदासी का कारण नहीं हो सकता है। मृत्यु छंद अनुवर्तिन लोकस्य न अभद्रम आगत। अरे मरने वाले तो मरेंगे, वो शोक का विषय नहीं है। क्या मृत्यु छंद अनुवर्तिन काल के कराल गाल में पड़े हुए संसारिक लोगों का कोई अमंगल तो नहीं हो गया? मरना छोड़कर कोई अमंगल बतलाना है, वो तो निश्चित मृत्यु के गाल में है। मृत्यु छंद अनुवर्तिन, मृत्यु तो सबके साथ लगी हुई है, उसी में कोई मर गया, मर गया, मरने वाला है, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। ऐसे मरने वाले लोगों का क्या अमंगल हो गया? अब मृत्यु से बढ़कर तो कोई अमंगल नहीं है ना। किसी अपने स्वजन के लिए, लोक के लिए, समाज के लिए, अपने जाति के लिए या किसी तरह का तुम शोक कर रही हो और इसके कारण उदास हो, ये उचित नहीं है। ये तो होना है, इन लोगों का कुछ अमंगल तो नहीं हो गया। सबसे बड़ा अमंगल है कि व्यक्ति धर्म का आचरण नहीं कर पाता है। मरना तो है ही, मर जाएगा वो कोई बात नहीं, वो तो मृत्यु छंद अनुवर्तिन, मृत्यु के साथ लगा हुआ है, ये तो होने वाला है। लेकिन अभद्र क्या आ गया है जिसके कारण तुम दुखी हो? ऐसे मरने वाला व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं कर पाता है, यह मंगल है। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, धर्मों का पालन ठीक से हो रहा है ना। दीन बदन त्वादिकम आलक्ष्य बहुधा विकल्पयन प्रीक्षति अपि अभद्रम इति सप्त भी। उनके उदास चेहरे को देखकर कश्यप जी प्रश्न करते हैं, सात श्लोकों में लगातार पूछेंगे। अमंगल, सबसे बड़ा अमंगल है कि ऐसे मरण धर्मा व्यक्ति धर्म का आचरण नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस जगत के सभी लोगों के लिए, विशेषकर ब्राह्मणों के लिए, नियत कर्म का वर्णन है, निश्चित किया गया है कर्म। किंतु मृत्यु के गाल में जाने वाले सभी लोगों के लिए धर्म है, यही कर्तव्य है। और दीति जी उदास है, इसका मतलब लोग बढ़िया से भजन नहीं कर रहे हैं। पहला शंका उनको है कि लोग भजन में नहीं लगे हैं। तो यहाँ से सात श्लोकों में प्रश्न पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न है कि लोगों का अमंगल तो नहीं हो गया, धर्म का पालन नहीं हो रहा है, ऐसी बात है क्या? और इसके बाद कह रहे हैं अपि वा कुशलम किंचित गृहेषु गृह मेधिनी धर्मस्यार्थस्य कामस्य यत्र जोगो ह्य जोगिनाम। हे प्रिय, हे गृह स्वामिनी, घर की मालकिन, तुम्हारा चित घर गृहस्थी में फंसा है। हे गृहेषु अजोगिनाम जोग, लेकिन यह अगर घर गृहस्थी भोगों के लिए नहीं है, किसी काम धंधा में कोई कमी बेसी हो रही है, इसको सोचकर उदास हो तो यह उचित नहीं है। इसलिए गृह मेधिनी संबोधन करके कहते हैं कि अरे इंद्रिय तृप्ति के लिए गृहस्थी को स्वीकार करने वाली गृह मेधिनी, गृह में ही जिनकी मेधा है, बुद्धि है, उसको गृह मेधी कहते हैं, स्त्रीलिंग में गृह मेधिनी कहते हैं। और गृह मेधी पुरुषों को कहा जाता है जिनका चित, जिनकी बुद्धि केवल घर गृहस्थी को संभालने में लगा है। कहते हैं कि हे गृह मेधिनी, क्या बात है तुम इस तरह उदास हो? ये घर गृहस्थी केवल विषय भोग के लिए नहीं है। अगर तुम्हारी मेधा इंद्रिय तृप्ति में लगी हो, तुम्हारी बुद्धि इंद्रिय तृप्ति में लगी हो कि हम इंद्रियों को तृप्त करें, घर गृहस्थी का साज सामान जुटाकर, एक से एक सामान लोग जुटाते हैं, घर में लाते हैं भोग की सामग्री, सुविधा जुटा कर रखते हैं घर में कि आराम से रहेंगे, एसी रूम रहेगा, फर्स्ट क्लास फर्नीचर, फर्स्ट क्लास गद्दा, बेड, खाने पीना, क्या क्या सामान लाकर घर में रखते हैं। उनका चित केवल इंद्रिय तृप्ति में है, लेकिन यह गृहस्थी का अर्थ नहीं है प्रिय। अगर तुम इस स्टेज पर होगी तब तो केवल दुख ही दुख होगा, लेकिन जानती हो धर्मस्यार्थस्य कामस्य यत्र जोगो हे जोगिनाम। गृहेषु अजोगिनाम जोग, यह गृहस्थ आश्रम तो जो जोग नहीं कर सकते, घर परिवार छोड़कर संन्यास लेकर वन में रहकर जो साधना नहीं कर पाते हैं, अजोगी हैं, अजोगी नाम, अजोगी जो अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ने में समर्थ नहीं है, जिनको भूख सता सकती है, जाड़ा गर्मी का प्रभाव जिन पर ज्यादा आ सकता है, इसी के फेरे में जो पड़े रहते हैं कि अरे हम क्या खाएंगे, भूख लगेगा तो, जाड़ा लगेगा तो हम कैसे रहेंगे, गर्मी में कैसे रहेंगे, ऐसे लोगों के लिए यह गृहस्थी ही योग का सबसे सुंदर मार्ग है कि यहाँ पर खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था है। तो गृहेशु अजोगिनाम योग, जो समर्थ नहीं है, जो क्वालिफाइड योगी नहीं है, जो विरक्त नहीं है, तपस्वी नहीं है, ऐसे अजोगियों के लिए भी योग मार्ग का फल देने वाला यह गृहस्थ धर्म है, घर गृहस्थी है। तो ये ऐसे घर गृहस्थी को प्राप्त करके थोड़ा कमजोर व्यक्ति भी जो तपस्या नहीं कर सकता, निर्जला एकादशी नहीं कर सकता, उनके लिए फल उल की व्यवस्था घर गृहस्थी में रहता है, वहां वो व्रत कर सकता है। जो बहुत जाड़ा नहीं सह सकता उनके लिए घर में व्यवस्था है, उनको पहनने के लिए कपड़ा चादर सब है, वहां पर व्यवस्था के साथ भजन कर सकता है। अजोगी असमर्थ व्यक्ति, और इस घर गृहस्थी में हे गृहमेधिनी, जानती हो यह गृहस्थी किस लिए बनाया गया है? धर्मस्यार्थस्य कामस्य जत्र जोगो हे जोगिनाम, जत्र धर्मस्य अर्थस्य कामस्य किंचित अपि वा अकुशलम। यह गृहस्थ आश्रम चार पुरुषार्थ में, तीन पुरुषार्थ गृहस्थी में सधता है, धर्म अर्थ और काम, मोक्ष नहीं सध पाता, इसके लिए संन्यास लेना पड़ता है। धर्म अर्थ काम, इसके सेवन में किसी प्रकार विघ्न तो नहीं उत्पन्न हो रहा है। हे गृह मेधिनी, अपि वा किम वा गृहेषु धर्मादे किंचिद अकुशलम इति काक्वा प्रश्न। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं, क्या इन सब व्यवहारों में कोई कमी दिख रही है? यत्र जेषु गृहेषु, इस घर में अजोगिनाम अपि जोग स्वधर्मादिनाम जोग फलम भवति, जो कमजोर जोगी को भी यह घर गृहस्थी जोग का फल दे देता है। जत्र जत्र जोगो या जोगी नाम, जत्र जहाँ, जिस गृहस्थ धर्म में, घर गृहस्थी में योगहीन कर्मीगण अपने धर्माचरण द्वारा योग के फल को प्राप्त कर लेते हैं, योग का जो फल प्राप्त होना चाहिए वो फल प्राप्त कर लेते हैं घर गृहस्थी में। प्रभुपाद जिस पर भावार्थ लिखते हैं, इसका टीका थोड़ा बड़ा लिखते हैं, गृह मेधिनी कश्यप जी के द्वारा संबोधन है, और वह संबोधन इस रूप में है कि अरे इंद्रिय तृप्ति के लिए गृहस्थी को स्वीकार करने वाली तुम इस स्टेज का हो क्या? कश्यप जी गृह मेधिनी कहकर यह कह रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए घर गृहस्थी को स्वीकार करके और नहीं पूरा हो पा रहा है तो उसके लिए उदास होना। अरे गृह स्वामिनी, तुम ऐसे गृह मेधिनी नहीं हो, यह घर गृहस्थी सुख देने वाला नहीं है, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। प्रभुपाद जी दो तीन श्लोक कोट करते हैं भागवत का, कहते हैं यह घर गृहस्थी खास करके स्त्री सुख आदि देखने मात्र का सुख है, इसमें सुख नहीं है। अगर कोई आवश्यकता अनुभव भी होता है, भूख प्यास या स्त्री सुख आदि, तो उसको आसानी से सह लेना चाहिए। प्रहलाद महाराज नृसिंह देव से कहते हैं कि हे नृसिंह देव, यन मैथुनादि गृह मेधि सुखम ही तुक्षम, इस श्लोक को कोट कर रहे हैं प्रभुपाद जी, यन मैथुनादि गृह मेधि सुखम ही तुक्षम कंडु यने न करवो रिव दुख दुखम तिप्यंत नेह कृपणा बहु दुख भाज कंडु तिवन मन सिजम विषहेत धीरा। घर गृहस्थी में जो सुख है वो तुक्ष सुख है। यन मैथुनादि, जिसमें परस्पर स्त्री पुरुष के साथ जो सुख प्राप्त होता है, मैथुन आदि सुख, यह सुख तुक्ष सुख है। इस सुख की तुलना प्रहलाद महाराज खुजली से करते हैं। ये शरीर में कोई खुजली हो जाए तो वह खुजली खुजलाने की इच्छा करती है, हाथ से उसको खुजलाते हैं, लेकिन खुजलाने से खुजली का समाधान नहीं होता है, दुख बढ़ता है। लेकिन कंडु ये न करे और इव दुख दुखम, उस खुजली को खुजलाने के लिए हाथ लगाते हैं तो दुख पर दुख बढ़ता है, और ज्यादा वो बढ़ जाता है। और तिप्यंत नेह कृपणा बहुत दुख भाजम, तो इस प्रकार घर गृहस्थी में पड़े हुए लोग जो जिस सुख का अन्वेषण कर रहे हैं उसको प्राप्त करते हैं तो सोचते हैं कि सुख मिलेगा, इसको जुटा लेंगे तो सुख मिलेगा, तब तक और समस्या बढ़ जाती है। बहुत सामान सामग्री घर में जुटाते हैं तो अब उसका मेंटेन करना बड़ा कठिन होने लगता है। कार चाहिए, एसी चाहिए, तो फिर पैसा भी चाहिए ना उसका मेंटेन करने के लिए, तो अब बढ़ता है। प्रहलाद महाराज का भाव क्या है कि उचित यह है कि खुजली तो आएगा लेकिन खुजलाना समाधान नहीं है, उसको सह लेना। जरूरत महसूस होगा लेकिन जरूरत की सामग्री जुटाकर सुखी नहीं हो पाएंगे। कंडू तिवन मनसिजम विषहेत धीरा, उसी प्रकार अगर मन में कोई कामुकता उत्पन्न होता है तो कामुकता की भोग की साधन जुटा करके उसको तृप्त करने से बेटर है कि उसको सह लिया जाए। अगर इस प्रकार जो सहता है वह धीर है, धीर की परिभाषा बतलाते हैं। तो धीर व्यक्ति उसको भोग के रूप में नहीं लेता है, उसको सह लेता है, खुजली की तरह खुजला कर अपने कष्ट को बढ़ाता नहीं, हाथ नहीं लगाता, थोड़े देर के लिए सह लेता है। तो इस प्रकार घर गृहस्थी के सुख सुख नहीं है, दुख को बढ़ाने वाले साधन है। अगर इसमें कुछ कमी बेसी हो रही हो तो इसके लिए टेंशन मत लो, एक तुम्हारे चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। कश्यप जी का यह भाव है। तो घर गृहस्थी किसके लिए है, तो फिर प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय से दो श्लोक कोट करते हैं। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित जावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य कर्म भी। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते, कहते हैं जो इतना धन कमाते हैं, बहुत से भोग साधन जुटाते हैं, इसके लिए मनुष्य जीवन नहीं है। जीवन में धन की आवश्यकता है लेकिन धन भोग के लिए नहीं, धन धर्म के लिए होता है। धन की जरूरत है, उस धर्म से ना अर्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः, यह अर्थ इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। जिसको प्राप्त करके हम अपने कामनाओं को तृप्त करें, खूब धन कमा लेंगे तो बेटर सुख भोगेंगे, इसके लिए घर गृहस्थी नहीं है और न इसके लिए धन है। तब किसके लिए धन है, तो कामस्य न इंद्रिय प्रीति, इन कामनाओं के द्वारा जो भोग जुटाते हैं, भोग की सामग्री जुटाते हैं, उसे इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहिए। यह जीवन का लक्ष्य नहीं है कि खूब धन कमाए उसे इंद्रिय तृप्ति करे, नहीं। धन का लक्ष्य धर्म है और वह जीवन का लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति नहीं। लाभो जीवित जावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य कर्म भी, जीव का वास्तविक लक्ष्य है तत्व जिज्ञासा। तत्व जिज्ञासा के लिए ही यह गृहस्थी है, घर गृहस्थी या जो भी है, तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य कर्म भी, अन्य कोई भी काम के लिए जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन मुख्य रूप से तत्व जिज्ञासा के लिए है। तो फिर प्रश्न होता है तत्व जिज्ञासा, तत्व माने, तब कहते हैं बदन्ति तत्त्व विदस तत्त्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। वह तत्व तत्वेता लोग तीन प्रकार से बताते हैं, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। तो वो तो विषयांतर हो जाएगा, लेकिन मुख्य बात है कि यह धन या भोग की सामग्री इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, धर्म में सहयोग करने के लिए। धन कमा लिए तो बेटर ढंग से, अच्छे ढंग से हम धर्म का आचरण करें, भगवान श्री विग्रह की सेवा करें, उनको उनके लिए भोग बनाए, उनकी सेवा करें, उनको फूल माला की व्यवस्था करें, उनके लिए मंदिर बनाए, और अगर कहीं भजन हो रहा है तो उसमें सहयोग करें। तो इस प्रकार अर्थात धर्म अर्थ काम के शास्त्रीय आदेशों का सही ढंग से पालन हो रहा है ना, ठीक ढंग से पालन हो रहा है। शास्त्रीय आदेशों के उल्लंघन से गृहस्थ जीवन का उद्देश्य तुरंत ही समाप्त हो जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं जिस गृहस्थी में शास्त्रीय आदेश का केयर नहीं किया जाता तो वह गृहस्थ जीवन का जो लक्ष्य है तत्काल समाप्त हो जाता है, तुरंत समाप्त हो जाता है। इसलिए वैदिक निर्देश के अनुसार गृहस्थी में रहना चाहिए। तो इस प्रकार फिर आगे कई श्लोकों में पूछ रहे हैं, अपिवा तिथयोभ्यत्य कुटुम्बा शक्तया त्वया गृहात् पूजिता जाता प्रत्युत्थानेन वा क्वचित, कहते हैं अथवा कभी तुम घर गृहस्थी में काम धंधों में आसक्त होने के कारण घर में आए हुए अतिथि का सम्मान नहीं की क्या, और अब उसको सोच सोच कर हमको देखकर पश्चाताप कर रही हो, क्या ऐसा हो गया क्या कि तुम्हारे घर कोई अतिथि आ गया और तुम अपने काम में आसक्त हो, फुर्सत नहीं है, तो आए हुए अतिथि का तुम स्वागत नहीं कर पाई खड़ी होकर, अभ्युत्थाने न अपि, कम से कम खड़ा होकर आइए, बैठिए, आसन देना और उनके लिए एक गिलास पानी देना, ये भी नहीं कर पाई क्या, के उदास हो, क्या तुम्हारे उदासी का कारण है, वा क्वचित या कभी कुटुंब आसक्तया, संभावना है घर गृहस्थी में आसक्ति के कारण, घर में बहुत सारे काम रहते हैं, घर साफ करना, बर्तन साफ करना, कपड़ा साफ करना, भोजन बनाना, डीटी वर्शिप करना, भगवान का श्रृंगार करना, बहुत सारा काम है, तो उस काम में आसक्ति में व्यग्र हो गई कुटुंब के भरण में, और अतिथय अभियत्य गृहात, घर में कोई अतिथि आ गए अचानक, अतिथि उसको कहते हैं जो आने का डेट न बतावे, जो बिना तिथि के आ जाए, जो डेट बतला कर आता है वो अभ्यागत है, पता है वो आने वाला है, तो उसकी तैयारी कर ली जाती है, और जो बिना तिथि बताए आ जाता है उसको अतिथि कहते हैं। तो ऐसे गृहस्थी में होता रहता है कि बिना तिथि बताए हुए भी कुछ लोग आ जाते हैं। त्वया अपूजिता गृहात जाता, और तुमसे बिना आदर प्राप्त किए ही घर से चला गया अतिथि, प्रत्युत्थाने न अपि, खड़ी होकर सत्कार भी नहीं कर पाई, आदर नहीं कर पाई, हो न हो यही तुम्हारे उदासी का कारण है। प्रभुपाद जी इस पर बहुत सुंदर टीका लिखते हैं, बहुत सुंदर, कहते हैं अतिथि सत्कार गृहस्थों के मुख्य कर्तव्यों में एक है। अगर गृहस्थ का कोई बहुत सारी ड्यूटी है तो उसमें एक ड्यूटी है अतिथि का स्वागत करना। शास्त्रीय आदेश है गृहस्थों के लिए, गृहे शत्रुमपि प्राप्तम विश्वस्तम अकुतो भयम्, घर में आए हुए शत्रु का ऐसा स्वागत करना चाहिए, शत्रु भी अगर आ जाए अपना दुश्मन भी, तो उसका ऐसा स्वागत होना चाहिए कि वो भूल जाए कि अतिथि उसका शत्रु है। अपने स्थिति के अनुसार अतिथि का उचित सत्कार करना चाहिए, ये शास्त्र का आदेश है। कम से कम बैठने के लिए आसन, मधुर भाषण, मधुर बारिश अभिनंदन, आइए आइए बैठिए, कम से कम मधुर बात बोलना चाहिए, आसन देना चाहिए, और एक गिलास पानी तो दे सकता है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी जिसके पास कोई घर नहीं, कोई आसन नहीं, कोई जगह नहीं है, भोजन की व्यवस्था भी नहीं है, तो कम से कम जमीन तो है, वो आकर कह सकता है बैठिए, नहीं पलंग है, नहीं कुर्सी है, कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन जो है धरती है उस पर प्रेम से उसको झाड़ पहुँच कर बैठने के लिए कहे, आइए यहाँ बैठिए, या जो भी अपने घर में चटाई हो, कोई भी सामान हो, वहां बैठने के लिए कहे प्रेम से, पहले तो हाथ जोड़कर अतिथि का स्वागत करे, आइए आइए आइए, आपका स्वागत है, बैठिए। इसके बाद कम से कम एक गिलास पानी तो अवश्य देना चाहिए। कश्यप जी पूछते हैं कहीं ऐसे अतिथियों का निरादर तो नहीं हो गया, अतिथियों का निरादर नहीं हुआ है ना? अब कहते हैं उसी को, उसी अतिथि स्वागत पर ही अभी बोल रहे हैं, गृहेषु तेष्व तिथयो नार्चिता सलिलैरपि यदि निर्यान्त तेनूनम फेरु राज गृहोपमा, जिन घरों में कोई अतिथि बिना जल लिए कम से कम एक गिलास पानी भी नहीं मिला और वो ऐसे ही लौट गया, तो निश्चय ही वह घर गृहस्थों का घर नहीं, गिद्दर सियार के रहने का बिल है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी कभी खेतों में या वनों में देखने को मिलता है बिल, चूहे के बिल से थोड़ा सा बड़ा होता है। कहते हैं कि चूहे जो बिल बनाते हैं उसमें सांप या चूहा रहते हैं, और उससे थोड़ा सा चौड़ा बिल होता है, तो हम लोग कहते हैं ये सियार का बिल होगा। रूपा जी कहते हैं खेतों में ऐसा बिल दिखता है तब अंदाज कर लिया जाता है कि सांप का चूहे का नहीं है, सियार का है। तो ऐसे बिल में कोई आश्रय नहीं ले सकता है, वो तो उसमें सियार ही रहेगा, कोई आदमी थोड़े जाकर रुकेगा, वर्षा से बचने के लिए उसमें थोड़े घुस पाएगा, वह किसी व्यक्ति के लिए आश्रय का स्थान नहीं हो सकता है। सियार का घर छोटा होता है, उनके रहने का जगह होता है, ऐसे घरों में कोई आश्रय लेने नहीं जाता। इसी तरह कोई मनुष्य जिसके घर में किसी व्यक्ति को आश्रय लेने का साहस न हो, जाने का हिम्मत न करे, उसके व्यवहार से स्वभाव से जिस घर में किसी व्यक्ति को आश्रय नहीं मिल पाता है, रुकने का जगह नहीं मिल पाता है, तो उसकी तुलना सियार के घर से किया गया है कि आश्रय का जगह नहीं। गृहस्थों का घर तो ऐसे होना चाहिए जहाँ कोई भी व्यक्ति आकर विश्राम कर ले, अतिथि के रूप में आतिथ्य उसका हो। लेकिन ऐसा अगर नहीं हो रहा है तब तो उसके घर को गिद्दड़ का घर, सियार का घर ही कहना चाहिए, यही उपमा उचित है। कश्यप जी कहते हैं, यदि निर्यांत ते नूनम फेरू राज गृहोपमा, फेरू राज माने सियार या गिद्दड़, निश्चित रूप से नूनम ते फेरू राज गृहोपमा, उस घर को निश्चित रूप से सियार का घर कहना चाहिए और उस गृहस्थ को सियार ही कहना चाहिए, गिद्दड़। वो वास्तव में मनुष्य नहीं है जो किसी का स्वागत नहीं कर पाया। तो अतिथि सेवा पर दो श्लोक बोले, फिर आगे कहते हैं, अपि यज्ञस्तु बेलायाम न हुता हविषा सती तयो द्विग्न धिया भद्रे प्रोषितई मई कर हिचित। हे प्रिय, संभव है कि मेरे बाहर चले जाने पर, मई प्रोषिते मुझे बाहर, घर से बाहर चले जाने के बाद, करहिचित अपि उद्विग्न धिया, तुम्हारा चित कभी कभी मेरे विषय में सोचकर उदास हो जाता होगा। ऐसा भी संभव है, पति घर पर नहीं है, कब आएंगे, कोई फोन उनकी भी व्यवस्था नहीं है पूछने का। कुछ पता नहीं है, समाधि में है, भजन कर रहे हैं, तो उनको डिस्टर्ब भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन पत्नी का चित पति में जाना स्वाभाविक है, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मई प्रोषिते, मेरे जाने के बाद, करहिचित अपि उद्विग्न धिया, मेरे विषय में तुम्हारा चित्त उद्विग्न हो रहा हो। और बेलायाम तया हविषा सती अग्नया तु होता न, समय होने पर भी तुम उचित समय पर जगी नहीं और हवन नहीं कर पाई, बेला होने पर, समय होने पर भी तुम हविष से अग्नियों में हवन नहीं किया। हो सकता है तुम्हारा चित्त मुझ में लगा हो और ठीक समय से तुम भगवान की आरती नहीं कर पाई, ठीक ढंग से हवन नहीं कर पाई। ब्राह्मण की पत्नी है तो निश्चित समय पर नियमित रूप से प्रतिदिन हवन करना पड़ता है, तो हवन नहीं कर पाई क्या, और जब मैं यहाँ उपस्थित हुआ तो तुम सोचकर उदास हो गई कि कहीं पूछ देंगे कि हवन हुआ कि नहीं, तब क्या कहूंगी, झूठ बोलूंगी कि सत्य बोलूंगी, दोनों में दिक्कत है, झूठ बोलना अधर्म है, असत्य बोलूंगा तो नाराज होंगे, बड़ी संकट हो जाता है अपने गुरुजनों के सामने साथ झूठ दोनों बोलने में, सत्य झूठ। अगर कोई गुरु महाराज पूछ देते हैं ठीक ढंग से जप हो रहा है ना, अगर नहीं हो रहा है तो कहना भी मुश्किल है कि नहीं हो रहा है। एक तो ये समस्या है कि नहीं जप छूट रहा है, ये कहना बड़ा कठिन काम है, लेकिन अगर नहीं बोलना भी झूठ है तो इसका उत्तर है चुप रह जाना, वो जान जाएंगे कि भजन में थोड़ा कमजोर चल रहा है। अगर सही उत्तर नहीं दे पाया तब भी पता चल जाता है, अगर सही उत्तर दे दिया तो एक मन में भावनाएं बढ़ जाती है, ये हमारे गुरु महाराज भी जानते हैं, मैं तो उनसे कह दिया हूँ कि मुझसे जप नहीं होता है, तो ये कहकर तो सर्टिफिकेट ले लिया कि जप मत करो, ऐसा नहीं, ये उदंडता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कुछ भजन की क्रिया को पूछ रहे हैं, हो रहा है तो ठीक से उत्तर दीजिए, नहीं हो रहा है तो चुप रह जाइए, चुप्पी से भी पता चल जाता है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम नहीं ठीक से कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए ठीक ढंग से। तो अब हमारे चले जाने के बाद तुम उचित समय पर हवन नहीं कर पाई क्या, यह प्रश्न है। यत पूजया काम दुघान याति लोकान गृहान्वित ब्राह्मणो अग्निश्च वै विष्णु सर्व देवात्मनो मुखम। कहते हैं, अरे देवी, हवन नहीं बंद करना चाहिए, दो श्लोक हवन पर भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यत पूजया काम दुघान याति लोकान गृहान्वित ब्राह्मणो अग्निश्च वै विष्णु सर्व देवात्मनो मुखम। अरे देवी, सर्वदेव आत्मनः विष्णु मुखम ब्राह्मणम च अग्नि गृह अन्वितम वै यत पूजया काम दुघान लोकान याति। जानती हो, सर्वदेवमय भगवान विष्णु के दो मुख हैं, ब्राह्मण और अग्नि। गृहस्थ पुरुष यदि इन दोनों की पूजा करता है तो उन लोकों की प्राप्ति होती है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। काम दुघान लोकान याति, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले लोग प्राप्त होते हैं अगर ब्राह्मण और अग्नि की पूजा होती है तो। प्रभुपाद जी इस पर लिखते हैं कि वैदिक प्रथा के अनुसार अग्नि में घी, अन्न, फल, पुष्प आदि की आहुति देने से भगवान प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार ब्राह्मण भोजन की संस्तुति की गई है, ब्राह्मणों के मुख से भगवान खाते हैं, इसलिए प्रत्येक उत्सव या पर्व के अवसर पर अग्नि में आहुतियां डाली जाए और ब्राह्मणों को खाने के लिए स्वादिष्ट अच्छा भोजन दिया जाए। ऐसे कार्यों से गृहस्थों को उच्च लोक की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अन्य उच्च लोक प्राप्त होते हैं। ऐसे उच्च लोक जहाँ सभी प्रकार की कामनाएं पूरी हो जाती है, तो काम दुघन लोका नियाति, वह गृहस्थ अपने कामनाओं को प्राप्त करने वाले लोक के पास जाता है, वहां चला जाता है। सर्वदेव आत्मनः विष्णु मुखम ब्राह्मणम च अग्नि, कई जगह भागवत में आया है, अनेकों जगह भगवान ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं। कई जगह तो ऐसा वर्णन है कि जितनी प्रसन्नता भगवान को ब्राह्मणों की मुख में भोजन से होती है, उतना अग्नि में हवन से भी नहीं होता है। तुलना दोनों में कर दिया गया है। कई जगह भगवान, भगवान के भक्त कई जगह बोलते हैं, जब जय विजय के प्रति सनकादिक श्राप दे दिए तो भगवान उपस्थित होते हैं, उस समय भी यह श्लोक आया है, और पृथु महाराज भी इस बात को कहते हैं। कई जगह ऐसा वर्णन है। तो भगवान के मुख्य दो मुख है जिससे भगवान कुछ ग्रहण करते हैं। प्रभुपाद जी तो लंबी टीका लिखते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये जो भगवान कह रहे हैं तो इसको भगवान प्राप्त करते हैं ब्राह्मणों के हाथ से, ब्राह्मणों के मुख से। अगर किसी वैष्णव को उत्कृष्ट प्रसाद बनाकर खिलाते हैं, ब्राह्मण को खिलाते हैं, तो भगवान को तृप्ति होती है। या कभी कभी हवन करते हैं तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसलिए प्रत्येक उत्सव, फेस्टिवल के अवसर पर, पर्व के अवसर पर अग्नि में आहुतियां डालनी चाहिए गृहस्थों को, और ब्राह्मणों को खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे कार्यों से गृहस्थ ऊंचे लोक को प्राप्त करता है, जहां उसकी कामनाएं पूर्ण होती है। तो ये करना चाहिए, तुम गृहस्थ हो तो इसलिए इन कार्यों को करना चाहिए। अपि सर्वे कुशली न तव पुत्रा मनस्विनी लक्ष्य स्वस्थ महात्मा नम भवत्या लक्षण रहम। हे मनस्विनी, भवत्या लक्षण अहम लक्ष्य, मैं तुम्हारे बहुत से लक्षणों से देख रहा हूँ, बहुत विचार कर रहा हूँ, तो अहम लक्ष्य मैं देख रहा हूँ, ऐसा अनुमान कर रहा हूँ, आत्मानम अस्वस्थम, इस समय तुम्हारा चित निश्चित रूप से अस्वस्थ है, दुखी है, और बहुत अनुमान कर रहा हूँ क्या कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है। लेकिन जितने प्रश्न करते जा रहे हैं ये अब अंतिम प्रश्न है। छह श्लोकों में जो बोले उससे नहीं लगा कि अदिति जी उन कारणों से उदास हैं, तब अंत में कश्यप जी एक अंदाज कर रहे हैं अंतिम प्रश्न, लेकिन कारण तो कुछ है जिसके कारण तुम उदास हो, क्या कारण हो सकता है। तब कहते हैं लग रहा है कि तव सर्वे पुत्रा कुशलिनः अपि, अरे तुम्हारे सभी पुत्र कुशल से है ना, ये भी एक उदासी का कारण है। एक माँ के लिए बेटों का कुशल से माँ कुशल में नहीं रह सकती है। तब कहते हैं कि अपि सर्वे कुशलिनः तव पुत्रा मनस्विनी, अरे मनस्विनी तव सर्वे पुत्रा कुशलिनः अपि, अरे तुम्हारे पुत्र लोग तो ठीक से है ना, उनका कुशल मंगल है ना। यह है अंतिम जिज्ञासा और यही है अदिति के उदासी का कारण, पुत्र कुशल से नहीं है। तब अब यहाँ इनके प्रश्न का समापन होता है। तब अदिति रुवाच, अदिति जी बोलती हैं, देखिए कैसे उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दे रही हैं। भद्रम द्विज गवाम ब्रह्मन धर्मस्यास्य जनस्य च त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम गृह मेधिन गृहाई में। कश्यप जी गृह मेधिनी संबोधन करते हैं तो अदिति जी भी गृह मेधी संबोधन करती हैं। वो संबोधन करते हैं कि हे गृह मेधिनी सब ठीक ठाक है ना, तो यहाँ अदिति जी कहती हैं कि हे ब्रह्मन, ब्रह्मन संबोधन तो की ही लेकिन गृह मेधिन संबोधन भी कह रही हैं, आपकी कृपा से द्विज गवाम धर्मस्य च अस्य जनस्य भद्रम, आपकी कृपा से ब्राह्मणों गायों धर्म का और इस लोक का, और जनस्य का अर्थ है यहाँ जो लोग हैं उनका, और अस्य जनस्य आपकी इस दासी का भद्रम मंगल है, किसी प्रकार अकल्याण नहीं, कुशल है। यहाँ समाज में ब्राह्मण सुखी हैं, गाय सुखी हैं, धर्म का ठीक ढंग से पालन हो रहा है, इस लोक में जनता भी सुखी है, आपकी ये दासी भी सुखी है, कुशल है। सुखी क्या है, कुशल है, कोई शारीरिक रूप से कोई कष्ट नहीं है, मानसिक कष्ट है। हे गृह मेधिन, हे मेरे गृह स्वामी, केवल मेरा ही ड्यूटी घर गृहस्थी संभालना नहीं है, अभी आप सन्यासी नहीं है, मैं गृह मेधिनी हूँ, गृह स्वामिनी हूँ, तो आप हमारे घर के स्वामी हैं, मालिक हैं। इसलिए हे गृह मेधिन, हे मेरे गृह के स्वामी, इमे गृहातिर्वर्गस्य परम क्षेत्रम, यह गृहस्थ आश्रम अर्थ धर्म और काम की साधना में सहायक है। आप जिसका प्रवचन किए कि अजोगिनाम अपि जोग, अजोगियों को भी अजोग देता है, तो उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है, सब ठीक से चल रहा है। त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम, त्रिवर्ग का जो परम क्षेत्र है घर गृहस्थी, वो ठीक से चल रहा है, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अर्थ धर्म काम इन तीनों वर्गों का उद्भव इस गृहस्थ आश्रम में है, यह सब यथोचित रूप से मैं संभालती हूँ, इसमें कोई कमी नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में अर्थ धर्म और काम की सिद्धि प्राप्त किया जाता है, किंतु मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास ग्रहण करना पड़ता है। कश्यप जी अभी सन्यासी नहीं है, इसलिए अदिति जी ब्राह्मण के साथ गृह मेधिन संबोधन कर रही है कि आप केवल ब्राह्मण नहीं, गृह मेधी भी हैं, घर के स्वामी हैं। अदिति उन्हें विश्वास दिला रही है कि आप जो कुछ पूछे घर गृहस्थी के विषय में, गृहस्थी का हर कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, ब्राह्मणों तथा गायों को सम्मान संरक्षण प्राप्त हो रहा है। बलि के राजा हो जाने पर गाय का वध नहीं हो रहा है, इसका शिकायत नहीं कर सकती है, वो महाभागवत है। सत्ता बदल गया, इंद्र चले गए, इंद्र के जगह पर बलि शासक हो गए, तो कसाई खाना नहीं खुलवा दिए। बलि महाराज भी परम भागवत हैं, वैष्णव हैं, तो बलि के शासन में आने से गायों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो कहती कि क्या करे, सत्ता पलट गई, गायों का वध हो रहा है, अब क्या पूछ रहे हैं, थर्ड क्लास का कसाई राजा आ गया। लेकिन बलि के प्रति कोई आक्षेप नहीं है अदिति जी का, कहते नहीं सब ठीक से चल रहा है, जनता धर्म का पालन कर रही है, सब लोग सुखी हैं, तो सत्ता पलटने से हो सकता है कि अराजकता आ गया हो, जनता दुखी हो, हाय हाय करने लगी हो, नहीं मुझे ऐसा सत्ता नहीं चाहिए, रोटी रोजी कपड़ा दो, ऐसा नहीं, इस तरह की मांग नहीं है, सब सुखी है, सभी जनता सुखी है, सभी धर्म का पालन कर रहे हैं, गाय कुशल है, ब्राह्मण कुशल है, किसी का हित नहीं हो रहा है, ऐसा कोई डिमांड नहीं है, ऐसा राजा नहीं है कि किसी को दुख दे, सब ठीक से चल रहा है, ब्राह्मणों तथा गायों को सम्मान प्रदान किया जा रहा है, कोई कमी नहीं है। अदिति जी इस विषय में सारे उनके प्रश्नों का उत्तर दे रही है एक श्लोक में ही। और जहां तक आप अग्नि और अतिथि की बात कही, अग्नयो अतिथयो भृत्या भिक्षो एच लिप्सवः सर्वं भगवतो ब्रह्मन् अनुध्यानन्न रिष्यति। हे ब्रह्मन् भगवतः अनुध्यानात्, भगवतः भगवतः अनुध्यानात्, आप जैसे समर्थ पति का स्मरण करने के कारण, नित्य स्मरण करने के कारण कोई भी भजन साधन में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, क्योंकि मुझे याद है कि मैं कश्यप जी की पत्नी हूँ। ऐसे महाधार्मिक महाभागवत परम पुरुष भगवान में चित लगाने वाले व्यक्ति की पत्नी हूँ, तो धर्म के आचरण में कोई कमी नहीं है। निरंतर आपके स्मरण के कारण अपने ऊपर नहीं गौरव के साथ यह न करे मैं बड़ा धार्मिक हूँ ठीक से करे, नहीं, भवतः अनुध्यानात्, आपका स्मरण करने के कारण अग्नय अतिथय भृत्या लिप्सव भिक्षव रिष्यति न। वो केवल अतिथि की बात किए कश्यप जी, और देखिए दीति जी कितना नाम रख दी, कहते हैं कि मैं आपके सेवा के कारण अग्नि का उचित समय पर उचित टाइम पर हवन करती हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी अतिथि किसी भी समय हमारे यहाँ आ गया, उसका समुचित स्वागत किया गया, कोई कमी नहीं। कोई सेवक भृत्या मान लो अतिथि की तो सेवा कर लिया, जो कोई नौकर है उसका, बड़े लोग धनी लोग नौकर का ध्यान नहीं करते हैं, बहुत शोषण करते हैं। अपने तो बहुत सूट बूट अनेक प्रकार के वस्त्र चाहिए, चादर चाहिए, स्वेटर चाहिए, कोट चाहिए, लेकिन सेवा करने वाला जाड़ा में भोर में उठकर कर रहा है, उसको ठंडा लगता है कि नहीं, इसका कोई केयर ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है कि उसको भी गर्म कपड़ा चाहिए, उसको भी समय से भोजन चाहिए। अपने तो डिमांड करते रहते हैं नौकर से, ये लाओ वो करो ये करो, लेकिन यह भी पूछ लेना मालिक का ही कर्तव्य है, तुम खाया कि नहीं, हमारे सामने खाओ, ठीक है खा लेंगे, वो तो नम्रता में बोलेगा, लेकिन फिर भी उसका केयर करना गृहस्थ का धर्म है। तो कह रहे हैं कि केवल अतिथि का नहीं, वृत्ति का भी, जो हमारे सेवा के लिए नौकर है, सेवक है, उनका भी, और भिक्षुक, भिक्षुक लोग जो दरवाजे पर आ जाते हैं कुछ मांगने के लिए, भिक्षव, ऐसे भिक्षुकों को भी मैं नहीं लौटने दी। घर गृहस्थी में कभी माताएं लगी रहती है, कोई भिक्षुक आया, राधे श्याम, ब्रज में बहुत आते हैं रोटी मांगने वाले भिक्षुक साधु, तो अब घर में लगी हुई, एक दो बार बोले फिर चले गए, अब ज्यादा देर तक तो खड़ा नहीं रह सकते, दूसरा द्वार देख लेंगे। तो अब जिस दरवाजे को छोड़ दिए उसका तो सौभाग्य गया। मैं कई बार देखा हूँ ब्रज में, बरसाना में, कि कोई बोला राधे श्याम मैया, तो तुरंत आवाज आता है, बाबा रुको आ रही हूँ, तुरंत एकदम, एक मिनट भी देर नहीं होता, रुको रुको, उनको डर है कि चला जाएगा। एक मान मंदिर पर बाबा रहते थे, वीर बाबा, वीर बाबा नाम के एक महात्मा थे, अभी उनका शरीर पूरा हो गया दो चार पांच महीना पहले, तो मधुकरी करने चलते थे, राधे श्याम बढ़ते जाते थे, रुकते थे ही नहीं, ब्रजवासी उनका नाम रख दिए थे मारुति बाबा तो वो बस निकले अपना झोली लेकर और पूरे मान मंदिर के जितने महात्मा है, 15-20 जितने लोग हैं, सबके लिए अकेले रोटी मांगते थे, और एक बड़ा कमंडल ले लेते थे, उसमें दूध या छाछ जो भी, और एक झोली रोटी, निकले राधे राधे, अब दौड़ दौड़ कर रोकना पड़ता, रुको बाबा रुको रुको रुको, थोड़ा भी विलंब होने पर चल देते थे। तो कभी कभी वो दो चार दरवाजा छोड़कर चले गए हैं, तब भी पीछे वाले रोटी लेकर दौड़ कर जाते थे देने के लिए। तो ब्रजवासी कहते थे मारुति बाबा है, रुकता ही नहीं तो ऐसे चलते थे। तो ये गृहस्थों का कर्तव्य है, कोई भिक्षुक आया और घर गृहस्थी में लगे रहने के कारण याचक की कामना पूरी नहीं हुई, भिक्षा नहीं दे पाए और चला गया, ऐसा नहीं हुआ है, कितना हूं हम व्यस्त हैं लेकिन भिक्षुक पर ध्यान देते हैं। अलिप्सव, भिक्षुक से भिन्न लिप्सव, दूसरे याचक, भिक्षा मांगने के लिए तो कोई दरवाजा पर आ ही गया, कुछ कोई दूसरे कामना से भी कभी कभी आ जाते हैं, उसको भी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं, उसको भी देते हैं, कहते 5 रुपया नहीं 51 रुपया, नहीं ठीक है 5 रुपया ले लो, 10 रुपया ले लो, कुछ कह करके उसको भी नहीं लौटने देती, खाली हाथ नहीं लौटने देती, अर्थात मैंने किसी प्रकार किसी का तिरस्कार नहीं किया है। आप अतिथि की बात करते हैं, मैं किसी का तिरस्कार नहीं की हूँ, कोई हमारे यहाँ से खाली हाथ नहीं गया है, न रिष्यति, ऐसे लौटा रिक्त नहीं लौटा है कि कुछ मिला नहीं और चला गया। यह सब भगवत अनुध्यानात, आपकी कृपा से, आपके स्मरण करने से मैं इस प्रकार सेवा करती रही। कोन में भगवान कामो न संपद्येत मानस, जस्या भवान प्रजाध्यक्ष एवं धर्मान प्रभाससे। हे भगवान, आप जैसे समर्थ प्रजापति जब इस प्रकार धर्म पालन का उपदेश करते हैं, आप जैसे धर्म पालक प्रजापति मेरे पति हैं, नू में मानस कह कामना संपदे, तब भला मेरे मन की ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी न हो जाए, क्योंकि कई बार आप इन विषयों पर प्रवचन दे चुके हैं, प्रथम बारे नहीं है, कई बार आप उपदेश किए हैं धर्म पालन के लिए, इसलिए जस्यम एवं धर्मान प्रभास से, जो आप धर्म पालन का इस प्रकार उपदेश करते हैं, नू में मानस कह काम न संपदे, तब भला मेरे मन में ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी न हो जाए, निश्चित रूप से पूरी होगी। भविष्य में होने वाले कामना का भी जिक्र संक्षेप में, संकेत में कर रही हैं। तय मारी च मन शरीर जा,
प्रजा इमा सत्व रजस्तमोजस समो भवान्ता स्वसुरादिषु प्रभो तथापि भक्तम भजते महेश्वरः।
हे आर्य पुत्र, मारीच संबोधन कर रहे हैं। मारीच कश्यप जी का नाम इसलिए है कि वो मरीची के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीची और मरीची के पुत्र कश्यप, तो मरीची के अपत्यवाचक नाम है मारीच। मरीची के पुत्र मारीच, मारीच का अर्थ आर्य पुत्र, श्रेष्ठ पुत्र। ऐसे मारीच नहीं कह रही है एकदम सीधे, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मारीच मरीची के पुत्र नहीं संबोधन कर रहे हैं, माने श्रेष्ठ व्यक्ति का पुत्र, आर्य पुत्र। एक भूमिका के साथ अपनी कामना को प्रस्तुत करने जा रही है। सब चीज बतला दी कि धर्म का पालन ठीक से हो रहा है, लेकिन मेरी समस्या क्या है उसको बहुत सुंदर ढंग से अप्लाई कर रही है, बहुत सुंदर ढंग से कर रही है। इमा प्रजा सत्व रजस तम जुस तव एव, ये जो प्रजा है चाहे वह रजोगुणी स्वभाव का हो, सत्वगुणी स्वभाव का हो या तमोगुणी स्वभाव का हो, ये सब आपकी संतान है, इसमें कोई शंका नहीं है। जो सत्य प्रधान देवता, रजो प्रधान असुर और तम प्रधान जीव, जो भी और लोग हैं, सब कुछ, सब लोग आपके संतान हैं। मन शरीर जा प्रभो, आप कुछ आपके संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, कुछ शरीर से उत्पन्न हुए हैं, कुछ स्त्रियों से उत्पन्न हुए हैं। केवल मैं ही आपकी पत्नी नहीं हूँ, और भी अनेक पत्नियां हैं। कश्यप जी के 17 पत्नियां थी, तो अलग अलग ढंग से आप संतान उत्पन्न किए हैं। कुछ को शरीर से उत्पन्न किए हैं, कुछ संतान कश्यप जी मन से भी उत्पन्न किए हैं, तो सभी आपके अपने हैं। यह अगर डायरेक्ट कह देती कि बलि राजा बन गया है स्वर्ग का, उसको हटाकर इंद्र को राजा बना दिया जाए, तो ये बड़ा उटपटांग होता है। ऐसा नहीं कह सकती है। क्यों? बलि भी तो अपना संतान है, दीति के संतान है, हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद के विरोचन और उनका बलि, ये तो कश्यप जी के संतान है। उसको कैसे कह दें कि उनको हटा दो? तासु असुरादिशु भवान समह, चाहे वह असुर हो या देवता हो, भवान समह, आप सभी संतान के प्रति सम हैं, सभी लोगों के प्रति आपका व्यवहार सम है। तथापि महेश्वरम भक्तम भजते, लेकिन स्वयं परमेश्वर भगवान विष्णु भी अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं जे जथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्य हम, समोहम सर्वभूतेषु, कि मैं सभी जीवों के प्रति सम हूँ, लेकिन जो मेरा भजन करता है स्पेशल ढंग से, उसका मैं स्पेशल केयर करता हूँ। जो जैसा मेरा भजन करता है जिस भाव से, तो मैं उसके भाव की पुष्टि करता हूँ। यद्यपि भगवान सम है, संपूर्ण जगत उनका संतान है, फिर भी भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं प्रभु। यह है भूमिका कि यह बलि स्वर्ग का राजा बना है, इसको हटाकर इंद्र को अपने आसन पर बिठाना है। यह कहने के लिए अदिति जी भूमिका के रूप में कह रही हैं। भगवान विष्णु जैसे अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, भगवान का नाम इसलिए रख दी क्योंकि भगवान के भक्त हैं, तो भक्त का कर्तव्य है भगवान के स्वभाव का केयर रखना। भगवान क्या चाहते हैं, भगवान का क्या इच्छा है, क्या स्वभाव है, उसका ध्यान भक्त रखते हैं। तो भगवान भी सम होते हुए भी अपने भजन करने वाले भक्तों का पक्ष ले लेते हैं, वैसे ही आपको भी अपने भक्तों का केयर करना पड़ेगा। तथापि भक्तम भजते महेश्वर, परमेश्वर सर्वज्ञ सम दृष्टि रखते हुए भी भक्तों के प्रति विशेष रूप से अनुग्रह प्रकाशित करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि आप सबके प्रति सम हैं, तथापि भक्तम भजते महेश्वर, अपने भक्तों का भगवान सम दृष्टि होते हुए भी विशेष ध्यान रखते हैं, भक्तों का केयर करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनका पालन करते हैं। उसी प्रकार आप अपने संतानों के बीच भक्तिमान इंद्र का पक्ष लीजिए, उनकी रक्षा कीजिए, यह भीतरी भाव है। इंद्र भक्त है, आपका अनुगत है, भगवान विष्णु का भी भक्त है, इसलिए इंद्र का विशेष ध्यान रखिए। बलि महाराज किसी माने में कम नहीं है, लेकिन बलि महाराज का कोई शिकायत नहीं कर पा रही है, क्योंकि यह कह दे कि बलि भक्त नहीं है असंभव नहीं है।
ऐसा नहीं कह सकती। देख लीजिए, विचार कर लीजिए, जो आपको उचित लगे। अगर आपके प्रति इंद्र का ज्यादा समर्पण है, आपकी बात मानता हो, तो आप उसके सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए। बड़ा दैन भाषा में अब यहाँ से बोलना प्रारंभ की, चार श्लोकों में अपने विचार को अदिति जी रखेंगी, फिर अगले सत्र में अदिति जी के विचार और कश्यप जी के द्वारा उपाय का वर्णन किया जाएगा। कश्यप जी जो उपाय बताएंगे उसका वर्णन होगा। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।